आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
अब बारी है हमारे और आप सबके बहुत प्रतीक्षित कवि गी चतुर्वेदी की। गी चतुर्वेदी की 11 पुस्तकें प्रकाशित हैं, उसमें से कविता संग्रह है आलाप में गिरह, न्यूनतम मैं और खुशियों के गुप्तचर। उनकी बहुत अच्छी कहानियों के 2 संग्रह हैं सावन तांटी की लड़कियां और पिंक स्लिप डैडी। निबंध की किताबें हैं टेबल लैंप और अधूरी चीज़ों का देवता। गीत की रचनाएं 22 देशी और विदेशी भाषाओं में अनुदित हैं। अनेक सम्मान उन्हें मिले हैं, जैसे भारत भूषण, स्मृति स्पंदन कृति सम्मान वगैरह। और एक बात है कि गीत हमारे समय के सबसे ज़्यादा उद्धृत कवियों में से एक है। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं और अगर आप फेसबुक पर उनसे नहीं जुड़े हैं और आप व्हाट्सएप पर भी, आपको गीत की पंक्तियाँ बराबर मिलती रहें और उन पंक्तियों की ऐसी तासीर है कि वो प्रेम, दर्शन शास्त्र और सामाजिक विमर्श की कठिन गलियों में बहुत सहजता से तैरती हुई पंक्तियाँ हैं। और इस बेहतर मनुष्य बनने का जो हमारा यत्न है, उसमें गीत की कविताएं, उनकी पंक्तियां हमारी बहुत मदद करती हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गीत चतुर्वेदी को उनकी ही एक कविता के साथ। मेरी देह से मिट्टी निकाल लो और बंजरों में छिड़क दो, मेरी देह से जल निकाल लो और रेगिस्तान में नहरें बहाओ, मेरी देह से निकाल लो आसमान और बेघरों की छत बनाओ, मेरी देह से निकाल लो हवा और यहूदी कैंपों की वायु शुद्ध कराओ, मेरी देह से आग निकाल लो, तुम्हारा दिल बहुत ठंडा है। की चतुर्वेदी।
बहुत शुक्रिया महेश जी। कुछ छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले मंच पर उपस्थित मेरे तमाम प्रिय कवियों, आदरणीय कवियों, नरेश सक्सेना जी, विनोद भारद्वाज जी, इनका अभिवादन करता हूँ। विनय जी, शरद जी, जोशना जी और विश्वासी जी, आप सबको बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर कविताओं से हमें समृद्ध करने के लिए, हमें सुनाने के लिए। कविता है एक कश्मीरी बच्चे के खत। कश्मीर का ये बच्चा है और एक बम विस्फोट में इसने अपने पिता को खो दिया है। ये खत में उसी त्रासदी का बयान कर रहा है। इसका कोई धर्म नहीं है, इसकी कोई जाति नहीं है, ये मनुष्य का बच्चा है। अगर हम कश्मीर में होते तो ये मेरा भी बच्चा हो सकता था या आपका भी बच्चा हो सकता था। कविता है एक कश्मीरी बच्चे के खत। ले जाओ ये जमीन, पेड़, पहाड़, नदियाँ और बर्फ। ले जाओ ये जमीन, पेड़, पहाड़, नदियाँ और बर्फ, जिनके लिए तुम बम फोड़ते हो, ये सब कहीं न कहीं मुझे मिल जाएंगे, पिता फिर कहीं नहीं मिलेंगे। जिस जगह गाड़े थे मैंने अपने दूध के दांत, जिस जगह गाड़े थे मैंने अपने दूध के दांत, उसी जगह गाड़ आया हूँ पिता को, धमाके के पास जिनकी सिर्फ उंगली मिली थी, धमाके के पास जिनकी सिर्फ उंगली मिली थी, शादी की अंगूठी से पहचाना था मेरी माँ ने, उनकी बाकी देह को मैंने कल्पना में दफन किया, जैसे बाकी देह को स्मृति में प्यार करूंगा। सुना है मर कर पिता पेड़ बन जाते हैं, सुना है मर कर पिता पेड़ बन जाते हैं, छांव देते हैं, मेरे पिता उंगली बन गए जो उठती रहेगी तुम्हारी ओर, मिट्टी के नीचे से खामोश जागती सोचती हुई होंगी। दूसरी कविता है, इसमें भी एक दृश्य है और शीर्षक है, पुल गिरने से मरे आदमी के घर में। शीर्षक से ही स्पष्ट है कि एक पुल गिर गया, उसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई और उससे घर का दृश्य हो गया। छोटी सी कविता, गरम तवे पे पड़ी पानी की बूंदों सा, गरम तवे पे पड़ी पानी की बूंदों सा छन्न करके चला गया जीवन। ऐसा जीवन भी बेकार नहीं जाता है, कम से कम तवे को एक वाद्य यंत्र की तरह बजा के जाता है। फिर ये तो एक भरा पूरा मानुष था, फिर ये तो एक भरा पूरा मानुष था जिसकी मुस्कान चांदनी की तरह रात के अंधेरों से लड़ती थी। देखो देखो मातम से भरे इस कमरे में दो चीजें अब भी मुस्कुरा रही हैं। देखो मातम से भरे इस कमरे में दो चीजें अब भी मुस्कुरा रही हैं, ये मरने वाले की तस्वीर मुस्कुरा रही है और ये जो रोने वाली है इसकी गोद में बैठा दो माह का बच्चा मुस्कुरा रहा है। छोटी सी एक कविता, नीम का पौधा। ये नीम का पौधा है जिसे झुककर और झुककर देखो तो नीम का पेड़ लगेगा। ये नीम का पौधा है जिसे झुककर और झुककर देखो तो नीम का पेड़ लगेगा, और झुको थोड़ा और झुको मिट्टी की देह बन जाओ तब तुम इसकी छांव भी महसूस कर सकोगे। इसे एक छोटी बच्ची ने पानी दे दे के सींचा है, इसे एक छोटी बच्ची ने पानी दे दे के सींचा है, इसकी हरी पत्तियों में वो कड़वाहट है जो जबान को मीठे का महत्व समझाती है। और जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है वो आए और इसकी लघुता से साहस ये भी एक अलग मूड की कविता है, चार वचन, चार अलग अलग पंक्तियां हैं, तीन हिस्सों में बटी है। खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते, खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते, पोंछे गए आंसू और चुराई गई नसीहतें बताई नहीं जाते। भीगी हुई आत्मा को धूप में टांग कर सुखाया नहीं जाता, जिया हुआ प्रेम और सुना हुआ संगीत लौट के जरूर आते हैं, जिया हुआ प्रेम और सुना गया संगीत लौट के जरूर आते हैं। दूसरा हिस्सा है, कुछ वादे कभी पूरे नहीं होंगे ये जान के भी कर दिए जाते हैं, कुछ पतों का कोई ठिकाना नहीं होता फिर भी उन्हें खोजा जाता है, जैसे पहाड़ी के पीछे मोहब्बत की नदी थी और नींद के पीछे सपनों का झरना था, तीसरा हिस्सा है इसका चार पंक्तियों का, तुम बहेलियों के बुतों पे फूल मत चढ़ाया करो। जो नौजवान बैठे हैं उन्हें बता दूं कि हिंदी में बहेलिया यानी चिड़ियों का शिकार करने वाला, जिसे उर्दू सयाह कहते हैं। तुम बहेलियों के बुतों पे फूल मत चढ़ाया करो, इससे चिड़ियों के पंख में दर्द बढ़ता है, माना कि समय पहरा है किसी की नहीं सुनता, लेकिन वह अंधा नहीं है, देखता सब कुछ है, लेकिन वह अंधा नहीं है, देखता सब कुछ है। एक आखिरी कविता पढ़ता हूं। मैं सुनता हूं, सुनने की क्रिया पे है ये कविता, क्योंकि सुनते बहुत है, सुनते बहुत कम है लोग आमतौर पर, बोलना ज्यादा पसंद करते, और जो बोले ना उससे सवाल करते हैं, कई बार सुनने के महत्व को कम करते हैं। तो है कविता, मैं सुनता हूं सुनता हूं सुनता हूं, ये बोलते हुए भी मैं सुनता हूं। सुनना एक तरह का न्याय है, सुनना एक तरह का न्याय है, जिसे वे नहीं समझ सकते, बोलने के उन्माद में जिन्होंने किसी को नहीं सुना। सिर्फ गाने से नहीं बरसता है मल्हार, बल्कि सुनने से भी जल उठते हैं दीपक। सिर्फ गाने से नहीं बरसता है मल्हार, बल्कि सुनने से भी जल उठते हैं दीपक। सुनना यानी शामिल होना, सुनना यानी शामिल होना, फिर भी बोलते हुए के हुजूम में कितना कमतर आता तुमने सुनने को। सबसे दुर्लभ गीत वही याद रखते हैं जिन्होंने बेहद खामोशी से उसे सुना। सबसे दुर्लभ गीत वही याद रखते हैं जिन्होंने बेहद खामोशी से उसे सुना। सुनने से जिंदा हो जाती है कहानियां, कहते हैं सुनने से जिंदा हो जाती है कहानियां। जलधारा नदी क्यों कहलाई, क्योंकि हमने उसके नाद को सुना। जलधारा नदी क्यों कहलाई, क्योंकि हमने उसके नाद को सुना। जैसे रूमी कहता था, आखिरी पंक्ति है इसकी, जैसे रूमी कहता था, कोई सुन रहा हो तो खुशी के मारे मुर्दे भी जाग उठते हैं, कोई सुन रहा हो तो खुशी के मारे मुर्दे भी जाग उठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया जीत भाई।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।